हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 70। बहुत ही सुंदर श्लोक है और इसमें भगवान भगवद गीता के द्वारा बता रहे हैं कि कौन व्यक्ति शांति को प्राप्त कर सकता है और कौन व्यक्ति को कभी भी शांति प्राप्त नहीं होगी। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम, ये कह थोड़ा गाएंगे इसको, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण की कमेंट्री से कुछ चीजों को हम उद्धृत करेंगे, फिर प्रभुपाद जी के तात्पर्य और अनुवाद को देखेंगे। श्री बलदेव विद्याभूषण 69 श्लोक के तात्पर्य में बोलते हैं, जिस प्रकार से एक महिला या स्त्री जो नाचती है और उसके सर पे एक पॉट यानी कि एक घड़ा रखा रहता है, तो आसपास की वस्तुओं पे ध्यान देने की बजाय उसका ध्यान उस घड़े पे रहता है जिसको उसे बैलेंस करके नृत्य करने का कार्य करना होता है। उसी प्रकार से स्थिति प्रज्ञ व्यक्ति की बुद्धि जो है वो भगवत साक्षात्कार में, आत्म साक्षात्कार में ही निहित रहती है, उसमें लगी रहती है और प्रारब्ध कर्मों के द्वारा, पूर्वगत कर्मों के अनुसार जो उसको भोग प्राप्त होते हैं सुख या दुख के रूप में, उसके प्रति वो उदासीन हो जाता है। उनका वो अनुभव करते हैं लेकिन उनको वो उदासीन, उसके प्रति उदासीन हो जाते हैं ये समझते हुए कि उनका उससे कोई संबंध नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो भगवान इस 70वें श्लोक में बताएंगे और गहराई से किस प्रकार से स्थित प्रज्ञ व्यक्ति इन डुअलिटीज, इन द्वैतताओं के प्रति वो उदासीन रहता है। और यहां बता रहे हैं, इसमें अनुवाद को देखेंगे, जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करने करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता है। तो आप जरा श्लोक को फिर से देखिएगा, इसकी संस्कृत को, आपूर्य माणम अचल प्रतिष्ठम। जब समुद्र में अनेक कई टन पानी लेकर के आती हैं, लगातार जो नदियां हैं वो गिरती रहती हैं, लेकिन समुद्र एक उस कारण से अपने पानी का जो लेवल है समुद्र में वो बढ़ता नहीं है, और गर्मी में जब नदियों का पानी कम हो जाता है या समुद्र सूर्य है जो कई टन पानी खींच लेता है, तब भी समुद्र का जो लेवल है, जो समुद्र का स्तर है, वो उतना ही रहता है। कितना सुंदर उदाहरण भगवान यहां बता रहे हैं। तो अब हमारे मन को, हमारे चित्त को देखेंगे कि कितनी सारी इच्छाएं हमारे हृदय में आती रहती हैं। तो एक स्थितप्रज्ञ व्यक्ति के हृदय में भी इस प्रकार से पूर्वगत किए कर्मों के अनुसार अच्छी और बुरी इच्छाएं आती रहेंगी, लेकिन उन इच्छाओं को पूर्ण करने के बजाय भगवत साक्षात्कार की इच्छा में लगने वाला व्यक्ति शांति को प्राप्त हो सकता है। मन में जो भी इच्छाएं आती हैं वो पूर्वगत किए गए संस्कारों की वजह से आती हैं, और अगर उन संस्कारों को हम और नहीं देते हैं, उन पे और ध्यान नहीं देते हैं, तो हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं, शांति को प्राप्त कर सकते हैं, और शांति को प्राप्त करने के बाद ही व्यक्ति को सुख मिल सकता है। इस बात की पुष्टि भगवान ने पहले की है, अशांतस्य कुतः सुखम, जो व्यक्ति अशांत है वो व्यक्ति सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता। तो अशांत कौन होगा, इस बात को भगवान यहां बता रहे हैं कि जो इन भौतिक इच्छाओं की पूर्ति में लग जाता है, जो इच्छाएं उसके पीछे लग गए पूर्ति करने में, जो इच्छाएं उसको पूर्ति करने में लग गए, तो ऐसा व्यक्ति शांति को प्राप्त नहीं हो सकता। तो यदि हम जीवन में शांति चाहते हैं, भक्ति करके हमें शांति तो मिलती है निश्चित है, लेकिन भक्ति के साथ साथ इंद्रिय संयम करना ही बहुत आवश्यक है, तभी हम सच्ची शांति को प्राप्त कर सकते हैं। तात्पर्य, यद्यपि विशाल सागर में सदैव जल रहता है किंतु वर्षा ऋतु में विशेषतया यह अधिकाधिक जल से भरता जाता है, तो भी सागर उतने पर ही स्थिर रहता है, वह ना तो वह विशुद्ध होता है और न तट की सीमा का उल्लंघन करता है। यही स्थिति कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की है, जब तक मनुष्य शरीर है तब तक इंद्र तृप्ति के लिए शरीर की मांगे बनी रहेंगी, आहार निद्रा भय मैथुन की इच्छाएं बनी ही रहेंगी। इस हम कह सकते हैं इस मोह में ना रहें या इल्यूजन में ना रहें कि हमको भूख लगना बंद हो जाएगी या हमको नींद आना बंद हो जाएगी या फिर मैथुन की इच्छा एकदम से चली जाएगी, ऐसा नहीं है। शरीर की इच्छाएं बनी रहेंगी लेकिन इन इच्छाओं की पूर्ति करने ही लगे रहने वाले व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं होता है। किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। हम इन इच्छाओं को केवल ना 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 करते हुए जीवन में सुखी नहीं रह सकते, हमको भगवान की भक्ति से एक उच्च प्रकार का सुख भी मिलना चाहिए। इंद्रियों को संयम तो करना ही है, साथ साथ कृष्ण भक्ति का उच्चतर सुख जब प्राप्त होगा तब हम वाकई अपनी स्थिति में स्थित रह सकते हैं, फिक्स्ड रह सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि भगवान की से यानी कि अपने इंद्रियों को संयम करने के साथ साथ कृष्ण की सेवा में भी लगातार लगे रहना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम उच्चतर स्वाद का अनुभव कर सकें। ठीक है, हम अखबार नहीं पढ़ेंगे, टीवी नहीं देखेंगे, लेकिन भगवद गीता भागवतम को पढ़ करके उनके रस का आस्वादन करना भी हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। ये बात समझ में आना चाहिए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करते रहते हैं। जो शरीर की आवश्यकता है और जो मन की भी आवश्यकता है वो भी भगवत कृपा से पूरी तरह से एक भक्त की संतुष्ट हो जाती है। अतः वह सागर के तुल्य होता है, अपने में सदैव पूर्ण। जैसे अगर आपने भर पेट प्रसादम पा लिया है तो आप बाजार में जाइए, चाहे कहीं पे भी जाइए, कितनी भी मिठाई की वस्तुएं हैं आप उनका स्वाद जानते हो लेकिन आपको बिल्कुल भी उनको खाने की इच्छा नहीं होगी। तो उसी प्रकार से एक भक्त भी भौतिक इंद्रिय तृप्ति की स्वाद को जानता है लेकिन भक्ति की प्रगति में करते करते अगर उसको भक्ति के सुख का अनुभव होने लगता है या जब उसको होने लगता है, होगा तो है कभी ना कभी, जब उसको होने लगता है तब वो स्वतः ही भौतिक इंद्रिय तृप्ति को त्याग कर देता है कि ये उसके इसका स्वाद अच्छा नहीं है, ये मुझे चाहिए नहीं। अतः वह सागर के तुल्य होता है, अपने में सदैव पूर्ण। सागर में गिरने वाली नदियों के समान इच्छाएं उसके पास आ सकती हैं किंतु वह अपने कार्य में स्थिर रहता है और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रंच मर भी विचलित नहीं होता। तो ये एक सच्चे भक्त का लक्षण है। भले ही हम स्तर पे नहीं हैं लेकिन हमको भक्ति भगवान के भगवद्गीता के द्वारा सच्चा स्तर भक्ति का मालूम चलता है कि वो है क्या, और साधना के द्वारा भक्ति के द्वारा भगवत कृपा के द्वारा एक दिन हम भी स्तर को पहुँच जाएंगे। जब हम शुरुआत में भक्ति करते हैं तो भौतिक इच्छाएं हमको बहुत परेशान करती ही हैं लेकिन अगर हम भगवान की से कृपा याचना करें कि हम उनकी शिक्षाओं का पालन कर पाएं भगवद गीता का, तो भगवान की कृपा से हम इन चीज़ों को पालन कर पाएंगे धीरे धीरे। कम से कम इच्छा तो आनी चाहिए कि इस प्रकार की स्थिति आ जाए मेरे चेतना की। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का यही प्रमाण है, इच्छाओं के होते हुए भी वह कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्मुख नहीं होता। यानी कि भौतिक भोगों की इच्छाओं का अनुभव है, उनका रस भी उसको पता है, लेकिन अब उस हीन रस से श्रेष्ठ रस उसको भक्ति का प्राप्त हो गया, इसलिए वो उस तरफ उन्मुख नहीं होता है। चूंकि वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में तुष्ट रहता है, अतः वह समुद्र की भांति स्थिर रहकर पूर्ण शांति का आनंद उठा सकता है। ये आप बहुत सिंपल उदाहरण है। आप फीस्ट खा रहे हैं, बढ़िया प्रसाद मिल रहा है, तो आप सूखा चावल क्यों खाएंगे? इंद्रिय तृप्ति एक्चुअली हमारे हृदय को केवल जलाती है, हमें सुख नहीं देती है। केवल अपनी पूर्वगत आदतों की वजह से हम सोचते हैं कि हमें इंद्रिय तृप्ति के द्वारा सुख मिल जाएगा। इस शरीर से एक्चुअली हमें कोई सुख नहीं मिल सकता है, केवल अज्ञान के कारण हम ऐसा सोच रहे हैं। किंतु दूसरे लोग जो मुक्ति की सीमा तथा इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं फिर भौतिक सफलता को क्या कहना, उन्हें कभी शांति नहीं मिलती। प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कोई व्यक्ति भोग चाहता है वो, या इस जगत से मुक्त होना चाहता है वो, या फिर कोई सिद्धि चाहता है और वो, तीनों प्रकार के लोग ये भौतिक इच्छा वाले हैं और इनकी इच्छाओं की पूर्ति के बावजूद भी असंतुष्ट रहते हैं। अब आप प्रश्न करेंगे कि ठीक है, भोग करने वाला असंतुष्ट रहता है, समझ में आता है, लेकिन मुक्ति की इच्छा करने वाला असंतुष्ट क्यों रहता है? क्योंकि मुक्ति की अवस्था में व्यक्ति ब्रह्मलीन भी हो जाए उसको भगवान का साक्षात्कार नहीं होता। आत्मा क्योंकि एक बहुत छोटी वस्तु है, छोटा जीव है, उसका साक्षात्कार भी एक छोटा ही सुख देता है।
तो इस कारण से जो मुक्ति है वो आत्मा को पूर्ण सुख नहीं दे सकती। लेकिन आत्मा जब भगवान से अपने संबंध को समझ लेता है और उनकी सेवा में लग जाता है, वो सेवा सुख जो मिलता है आत्मा को, वो अनंत होता है। तो जब तक व्यक्ति भगवान की भक्ति में स्थित नहीं होता है, तब तक उसके हृदय से ये भौतिक इच्छा नहीं समाप्त होने वाली है, ये समझ में आना चाहिए। और सिद्धि कामी तो बहुत स्पष्ट है। सिद्धि क्यों व्यक्ति चाहता है? ताकि इस जगत की वस्तुओं को या व्यक्तियों को वो और अधिक प्रकार से नियंत्रण में ला सके, यानी भगवान बनने की इच्छा। तो इस प्रकार की इच्छा तो निश्चित रूप से भौतिक है और इसके द्वारा भी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिल सकती। कैसे मिल सकती है? अहेतु के प्रतिहता ये नात्मा सुप्रसिद्धति। भगवान के चरणों में बिना किसी भौतिक अभिलाषा के प्रेम जागृत हो जाए और इस कारण से हम जब लगातार भगवान की भक्ति में लगे रहेंगे तो हम इस निष्काम स्थिति से भगवान की भक्ति करते हुए सुख की प्राप्ति कर सकते हैं और तभी शांति मिलेगी। कर्मी मुमुक्षु तथा वे योगी सिद्धि के कामी हैं, वे सभी अपूर्ण इच्छाओं के कारण दुखी रहते हैं। इंटरेस्टिंग बात है कि ये सारी इच्छाएं अपूर्ण हैं भुक्ति मुक्ति और योगियों की, क्योंकि ये भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करने की तरफ नहीं उन्मुख होती हैं। जबकि भक्त की, एक शुद्ध भक्त की इच्छा होती है किस प्रकार से मैं कृष्ण की इंद्रियों को सुख दे सकूं, और ये हर व्यक्ति हर परिस्थिति में कभी भी कहीं भी किसी समय भी किसी भी अवस्था में कर सकता है। तो भगवान का जो ये जो मुख्य गुण है भक्त का कि भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहता है, तो उससे अपने आप ही उसको अत्यधिक सुख प्राप्त होता है। जैसे पेट में खाना देने से हमारे हर इंद्रिय को सुख मिल जाता है, तो उसी प्रकार से भगवान को संतुष्ट करने के द्वारा, भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करने के द्वारा हम हर प्रकार से संतुष्टि का अनुभव स्वयं ही करते हैं। किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष भगवत सेवा में सुखी रहता है और उसकी कोई इच्छा नहीं रहती। कोई इच्छा नहीं रहती मतलब भगवान की सेवा का सुख के अलावा, यानी भगवान को सुख देने के अलावा, भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करने के अलावा और कोई इच्छा नहीं रहती। वस्तुतः वह तो तथा कथित भव बंधन से मोक्ष की भी कामना नहीं करता। कृष्ण के भक्तों की कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती, इसलिए वे पूर्ण शांत रहते हैं। तो इसी की हमने विवेचना करी, और ये स्थिति भक्ति में भी हमारे तभी आ पाएगी जब हम लगातार भगवान की सेवा में लगे रहने का संकल्प और प्रयास करें और इंद्रियों को भोगों में न जाने दें, भले ही भोग की इच्छा पूर्वगत कर्मों के अनुसार हमारे जीवन में आए। तो यहाँ रुकेंगे। हरे कृष्णा।